नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपका स्वागत करता हूं आज के इस पाठ में। आज के पाठ का विषय है भक्तिकालीन काव्य धाराओं की पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन था। साहित्य में इसकी सबसे प्रखर अभिव्यक्ति हुई। भारत की समस्त आधुनिक आर्य भाषाओं में इस साहित्य की रचना हुई। इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो सभी भाषाओं के साहित्य में विद्यमान है। सन 1400 से 1650 तक के काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के तौर पर जाना जाता है। इस काल के साहित्य की व्याख्या विश्लेषण के बाद इतिहासकारों ने इसे हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। यहाँ हम भक्तिकाल के साहित्य की विभिन्न धाराओं का परिचय देते हुए इसकी सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। भक्तिकाल की उत्पत्ति के कारणों के बारे में हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के बीच तीखी बहस रही है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की उत्पत्ति के कारणों के बारे में लिखा कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। शुक्ल जी ने मुस्लिम शासकों के अत्याचारों को भक्तिकाल की उत्पत्ति का कारण बताया, लेकिन यह मत न तो तथ्यपरक था और न ही तर्कसंगत, क्योंकि न तो इस काल के साहित्य में कोई साक्ष्य मिलता है और न ही इतिहास में। भक्ति के संदर्भ में प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, इसलिए मुस्लिम अत्याचार की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्तिकाल का उदय नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुस्लिम अत्याचारों को इसका कारण नहीं माना और लिखा, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की धारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में, फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति की खोज परंपरा में की है, लेकिन वर्तमान में इसके इतने उभार का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। भक्तिकाल से पहले आदिकाल की परिस्थितियों और साहित्य हमने पीछे के पाठों में विचार किया है। यदि उसे याद करें तो हम पाएंगे कि मुस्लिम शासन का भारतीय जीवन के हरेक पक्ष पर गहरा प्रभाव पड़ा। विशेष तौर पर उन्होंने सड़कें, नहरें बनवाई, जिससे खेती और व्यापार पर सकारात्मक असर पड़ा। सूफियों की दरगाहों में पनप रहे समतामूलक मूल्यों और एकेश्वरवाद के समतामूलक संदेश ने जड़ता को तोड़ा और समाज में नई आकांक्षाएं पैदा की। भक्ति आंदोलन इसी की साहित्यिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। भारतीय साहित्य के मर्मज्ञ एवं नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भक्तिकाल के साहित्य के बारे में लिखा है, कोई भी भाषा अपने साहित्य की दृष्टि से अपने प्रति श्रद्धा आकर्षित कर सकती है। इस प्रकार का विशेष महत्व हिंदी भाषा के साहित्य में यथेष्ट रूप में पाया जाता है। मध्ययुग के साधक कवियों ने हिंदी भाषा में जिस भावधारा का ऐश्वर्य विस्तार किया है, उसमें असाधारण विशेषता पाई जाती है। वह विशेषता यही है कि उनकी रचनाओं में उच्च कोटि के साधक एवं कवियों का एकत्र सम्मिश्रण हुआ है। इस प्रकार का सम्मिश्रण दुर्लभ है। प्राचीन हिंदी साहित्य में जिन साधक कवियों ने उच्च स्थान प्राप्त किया था उनमें कोई भी अपनी विद्वत्ता के लिए विख्यात नहीं था, ऐसा यदि कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। स्वच्छ जल का स्रोत जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ से अपने आंतरिक वेग के साथ स्वतः ही उत्सारित होता रहता है, उसी प्रकार इन कवियों की भावधारा अपने शुद्ध आनंद की प्रेरणा से स्वतः प्रभावित हुई है। हिंदी साहित्य में 250 सालों तक भक्ति काव्य धारा प्रवाहित होती रही। इसमें कबीर, रविदास, दादूदयाल, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, मीरा, तुलसीदास जैसे महान और कालजयी साहित्यकारों ने साहित्य रचना की। भक्ति आंदोलन वास्तव में लोक जागरण था। भारतीय समाज में घटित हुई इस सांस्कृतिक क्रांति ने समाज में निम्न माने जाने वाली जातियों में समानता और भाईचारे की चाह पैदा हुई। इन वर्गों ने जाति, वर्ण और लैंगिक आधार पर भेदभाव और विशेषाधिकारों को चुनौती दी। समता के मानवीय संदेश की वाहक जनभाषाओं की प्रतिष्ठा मिली। इस आंदोलन का सार ईश्वर के समक्ष मानव मात्र की बराबरी और प्रेम में है। इस दौरान भक्ति की चाहे निर्गुण धारा हो या सगुण, दोनों ने भक्ति उपासना के बाहरी कर्मकांडों को त्याग कर मूल तत्व पर जोर दिया। ईश्वर मिलन के लिए मानव मात्र से अनुराग को भक्ति के केंद्र में स्थापित करते हुए मानव प्रेम को ईश्वर प्रेम का पर्याय बताया। इनकी साधना में व्यक्तिक निर्वाण की प्रधानता नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्थान का उपक्रम है। अहंकार का त्याग और आचरण की शुद्धता इसके लिए आवश्यक है। गुरु की महिमा को इस तरह रेखांकित किया है कि वह सत्य के साक्षात्कार की इच्छा पैदा करता है, उसका मार्ग बताता है और उसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है। लोक अनुभव और लोक का ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान से श्रेष्ठ माना है। लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों, बाहरी आडंबरों, रूढ़ियों और कुरीतियों की तीखी आलोचना की। इनको बढ़ावा देने वाले कर्मकांडी धर्म और उनके पुरोहितों, मुल्लाओं या गुरुओं की खिल्ली उड़ाई। भक्ति काव्य पर विचार करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें व्याप्त 5 बिंदुओं की ओर संकेत किया है। प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष नहीं। ईश्वर के प्रति प्रेम कुलीनता से बड़ा है। भक्त ईश्वर से बड़ा है। भक्ति के बिना शास्त्र का ज्ञान और पांडित्य व्यर्थ है। नाम रूप से बढ़कर है। ईश्वर के स्वरूप की अवधारणा के आधार पर हिंदी भक्ति काव्य को 2 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, ईश्वर को सांसारिक गुणों से रहित या उसे ऊपर और ईश्वर को रूप आकार रहित मानने वाली विचारधारा। सगुण भक्ति काव्य धारा, ईश्वर को सांसारिक गुणों से युक्त और ईश्वर का रूप आकार से स्वीकार करने वाली विचारधारा। निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धारा के 2-2 भेद किए हैं। इस तरह भक्तिकाल में कुल 4 काव्यधाराएं हैं। इनके नाम और उनके प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। निर्गुण ज्ञानाश्री, इस काव्यधारा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है। नामदेव पहले संत कवि हैं जिनका ताल्लुक मराठी से था। हिंदी में इन्होंने काव्य रचना की। कबीर, नानक देव, रैदास, धन्ना, सेना, पीपा, दादूदयाल, मलूकदास, सुंदरदास, धर्मदास उल्लेखनीय हैं। निर्गुण प्रेमाश्रय, इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। जायसी, मज्झन, कुतुबुन इस धारा के उल्लेखनीय रचनाकार हैं। सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा, कृष्ण की लीलाओं का गायन किया गया है। सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान इसमें उल्लेखनीय रचनाकार हैं। सगुण राम भक्ति काव्यधारा, राम के जीवन को इसमें आधार बनाया गया है। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति इसके उल्लेखनीय रचनाकार हैं। यहाँ हम भक्ति काव्य की चारों धाराओं का सामान्य परिचय और उनकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। निर्गुण ज्ञानाश्रय अथवा संत काव्यधारा, संत शब्द का प्रयोग आम तौर पर बुद्धिमान, पवित्र आत्मा, परोपकारी, सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। संत साहित्य में इसे उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसने सतरूपी परम तत्व को अनुभव कर लिया है, जिसका सत्य से साक्षात्कार हो गया, वही संत है। कबीर ने संत की पहचान अपने इस दोहे में दी है, निर्बैरी निःकामता साई सेति नेह, विषया सुंदरा दूर रह संतिन को अहम एह। संत मत किसी खास ग्रंथ पर आधारित नहीं है, बल्कि संत मत निरंतर बनती हुई सांस्कृतिक सड़क की तरह है। विभिन्न संतों ने अपनी परंपरा और अनुभव से जो महसूस किया वो संत मत में शामिल होता गया। हर संत ने अपने अनुभव से प्राप्त सच से इसके निर्माण में योगदान दिया। संतों का अनुभूत सत्य ही इस मत का आधार है। बुद्ध के अपोदीपक भव की तर्ज पर संतों ने मूल तत्व को ग्रहण करने पर बल दिया। संत निरंतर सत्य की खोज में लीन रहते थे, अपने हृदय में मानवीय गुणों के विकास के लिए अवतार, मूर्ति आदि किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते। इनका मानना था कि साधना में किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। संत काव्य में संत नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक, संत रविदास, दादूदयाल, सुंदरदास, गरीबदास, मलूकदास, धन्ना, सेना, पीपा, रज्जब, दरिया साहब आदि अनेक संत कवियों ने साहित्य रचना की। संतों ने ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार किया है। एकेश्वरवाद पर विश्वास व बहुदेववाद, अवतारवाद का विरोध किया। संतों ने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों व कुरीतियों का विरोध, सामाजिक धार्मिक भेदभाव का विरोध तथा आचरणगत शुद्धता पर जोर दिया। गुरु की महिमा को स्वीकार किया है। गुरु ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का बोधक है, वह मुक्ति प्राप्ति का साधन है। गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊंचा स्वीकार किया है। प्रेम को महत्व दिया है। आत्मा और परमात्मा के बीच मिलन का सूत्र प्रेम है। मानवीय प्रेम और एकता पर बल दिया है। जातिगत समानता तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। संत मत में शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा लोक ज्ञान की प्रतिष्ठा की है। प्रेमाश्रय शाखा अथवा सूफी काव्य, निर्गुण काव्य धारा की प्रेमाश्रय शाखा का दार्शनिक आधार सूफी मत है। इस मत के साधकों के लिए सूफी शब्द के प्रयोग के बारे में कई धारणाएं हैं। सुफा, सफ, सोफिया, सूफ आदि शब्दों से इसकी व्युत्पत्ति होने पर विचार किया है। एक धारणा ये है कि जिनका कोई घर बार नहीं और चबूतरे पर ही सो जाया करते थे, अहले अल सफ़ा यानी चबूतरे के निवासी, सादगी, गरीबी और ईश्वर की आराधना के प्रति पूर्णतः समर्पण का रास्ता अपनाने वाले सूफी कहलाने लगे। दूसरी धारणा ये है कि सूफी शब्द सफ़ी से निकला है, जिसका अर्थ है पवित्रता। जिन लोगों ने भोग विलास और इच्छाओं को त्याग कर अपने निर्मल चित्त को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, वे सूफी कहलाए। तीसरी धारणा ये है कि सूफ अर्थात ऊन से है। सुख व भोग के साधनों को त्यागने वाले, रूढ़ियों व धार्मिक कर्मकांड को निरर्थक मानने वाले, ईश्वरीय प्रेम में तल्लीन लोग जो ऊन के मोटे कपड़े और ऊन की ऊंची टोपी पहनते थे, ऊन के वस्त्र धारण करने के कारण वे सूफी कहलाए। हमेशा ईश्वर आराधना में लीन और आध्यात्मिक ज्ञान से प्रदीप्त निर्मल हृदय व्यक्ति सूफी है। मानव प्रेम को ईश्वरीय प्रेम मानना और खुद को ईश्वर की कृपा पर छोड़ देना सूफियों के सिद्धांत हैं। सूफी मत में साधना के चार सोपान हैं, शरियत यानी विधि, तरीकत यानी रहस्यवाद, हकीकत यानी सत्य तथा मारिफत यानी ज्ञान। इनके माध्यम से व्यक्ति ब्रह्म मिलन तक पहुंचता है। भारत में 11वीं शताब्दी के आसपास सूफी मत का विकास होना आरंभ हुआ। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और महदवी संप्रदायों ने मुख्य तौर पर भारतीय समाज में स्थान बनाया। सूफियों के महत्वपूर्ण केंद्र लाहौर, मुल्तान, उच्च, सरहिंद, हांसी, समाना, पानीपत, करनाल, दिल्ली और अजमेर थे। मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख चिश्ती, अली कलंदर जैसे सूफी साधकों ने भारतीय जनजीवन को प्रभावित किया। इन फकीरों ने हिंदू और मुसलमानों में सांस्कृतिक एकता स्थापित की। सूफियों ने पौराणिक और लोक प्रचलित प्रेम कथाओं के आधार पर लोक भाषाओं में रचना की। हिंदी में मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन, मज्झन, नूर मोहम्मद प्रमुख सूफी कवि हैं। सूफी प्रेम को जीवन का आधार मानते थे। उनकी दृष्टि में प्रेम निरूपण ही सौंदर्य निरूपण है। सूफियों का मानना है कि ईश्वर प्रेम का भूखा है और प्रेम के सूत्र से उस तक पहुंचा जा सकता है। आत्मा और परमात्मा के बीच मिलन का सूत्र प्रेम है। सूफी कवियों को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। सूफी काव्य में गुरु की महिमा का बखान किया गया है। गुरु के बिना ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। गुरु ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग का बोधक है, वह मुक्ति प्राप्ति का साधन है। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। जायसी ने पद्मावत में तोते को गुरु माना है, वही पद्मावत का पता बताता है, उससे मिलने की इच्छा जागृत करता है और रास्ता भी वही दिखाता है। सूफियों का लोक जीवन से गहरा जुड़ाव है। इन्होंने लोक प्रचलित कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया। अंधविश्वास, मनोतियाँ, यंत्र तंत्र प्रयोग, जादू टोना, डायनों की करतूतों का प्रसंगवश वर्णन किया है। विभिन्न लोक उत्सवों, लोक व्यवहार, तीर्थ व्रत समेत पूरे सांस्कृतिक वातावरण का विश्वसनीय चित्रण किया है। सूफियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। प्रबंध काव्यों की रचना की, दोहा चौपाई का अधिक प्रयोग किया, लेकिन सोरठा, सवैया, बरवे का भी प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य मुख्यतः अवधी भाषा में रचित है। कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य की रचनाओं का आधार श्री कृष्ण का चरित्र है। यह श्री कृष्ण महाभारत का कृष्ण नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत पुराण का श्री कृष्ण है। 12वीं व 13वीं शताब्दी में श्री कृष्ण को बढ़ावा मिला। दक्षिण के आलवार संत वैष्णव मत को मानते थे। इस समय में मतों, संप्रदायों की स्थापना हुई। इन संप्रदायों ने भक्ति के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। साहित्य पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। इनके समय, इनके प्रवर्तक, संप्रदाय और उनके मुख्य सिद्धांत का विवरण इस तालिका में इस प्रकार से दिया गया है। 12वीं शताब्दी, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज, श्री संप्रदाय। 13वीं शताब्दी, द्वैतवाद, माध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय। 13वीं शताब्दी, शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय। 13वीं शताब्दी, द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य, सनकादि संप्रदाय। इन आचार्यों के शिष्यों ने भी आगे सिद्धांतों की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ईश्वर का अपने भक्त पर अनुग्रह ही पुष्टि है। पुष्टि मार्ग में भक्त अपने इष्ट से मिलने के प्रयत्न नहीं करता, बल्कि खुद को अपने इष्ट को समर्पित कर देता है, खुद को अपने इष्ट की शरण में छोड़ देता है और उसकी फिक्र उसका इष्ट करता है और इष्ट उस पर अनुग्रह करता है। भक्ति यहाँ इष्ट प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि साध्य है। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग के 8 शिष्यों के मेल से अष्ट छाप की स्थापना की। इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य तथा 4 विट्ठलनाथ के थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास। विट्ठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास। हिंदी के अष्टछाप के कवियों ने पुष्टि मार्गीय भक्ति के आधार पर प्रचुर मात्रा में कविताएं रची। इनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप में लीलाएं तथा माधुर्य भावपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण काव्य में वर्णित भक्ति माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। कृष्ण भक्तों ने प्रेम को ही अपनी भक्ति का अवलंब माना है। कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। अवतारवाद में विश्वास करते हुए श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से भक्ति के ज्ञान से प्रेम को श्रेष्ठ ठहराते हुए निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। कृष्ण भक्ति काव्य के वात्सल्य और श्रृंगार असल में जीवन के आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति है। राम भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा की रचनाओं का आधार राम का चरित्र है। वैष्णव मत की मान्यता के अनुसार विष्णु मानव के रूप में समाज के कष्टों संकटों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। राम यहाँ विष्णु के अवतार हैं। राम की लीलाओं को आधार बनाकर रचनाएं की गई। राम भक्ति काव्य में समन्वय की भावना पर जोर दिया। आदर्श और व्यवहार, लोक और शास्त्र, गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय दर्शाया। शाक्त और शैव मत में राम एवं कृष्ण की उपासना में व्यापक समन्वय प्रस्तुत किया है। सामाजिक जीवन में आदर्शों की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श चरित्र के रूप में चित्रित किया। राम आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति हैं। विष्णु के अवतार राम की उपासना की है। वे परब्रह्म स्वरूप हैं। राम पाप का विनाश करने और धर्मोद्धार करने के लिए मानव रूप में अवतार लेते हैं। राम के चरित्र में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। काव्य में भक्ति के सभी रूपों का वर्णन किया है, किंतु भक्ति साधना में दास्य भाव पर जोर है, जिसका मूल मंत्र शरणागति है। राम भक्ति काव्यधारा रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशव आदि के नाम इसमें लिए जा सकते हैं। इस धारा के मुख्य कवि तुलसीदास हैं, जिन्होंने राम के जीवन पर रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की। तुलसीदास का साहित्य ही राम भक्ति काव्य का पर्याय है। भक्ति काल के साहित्य की भारतीय समाज को देन। भक्ति काल के साहित्य ने सामाजिक रूप से निम्न जातियों में उत्साह का संचार किया, हिंदुओं और मुसलमानों में एकता की नींव डाली और साझी संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। सामाजिक भेदभाव व ऊंच नीच की परंपराओं पर करारा प्रहार करके मानवीय एकता की स्थापना करने का रास्ता सुझाया। धार्मिक क्षेत्र में फैले पाखंड, रूढ़िवाद, अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों की कटु आलोचना करके तर्क विवेक की स्थापना करने की कोशिश की। भक्तिकाल के साहित्य ने लोक भाषाओं में साहित्य की रचना करके भाषाओं को प्रतिष्ठित किया। भक्तिकाल में प्रमुखतः दो भाषाओं का प्रयोग हुआ, ब्रजभाषा और अवधी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी का रूप है और अवधी पूर्वी हिंदी का। ब्रजभाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ और अवधी का मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से। इन भाषाओं का वास्तविक और मधुर प्रयोग भक्तिकाल में हुआ है। भक्ति आंदोलन का एक पक्ष था भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, चाहे भक्ति सगुण की हो या निर्गुण की। दूसरा पक्ष था सामाजिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, शोषण, अत्याचार व अन्याय का विरोध। भक्तिकाल का काव्य एक प्रकाश पुंज की तरह है, जिससे हिंदी समाज और हिंदी का साहित्यकार हमेशा ही प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा। लोक जीवन से जुड़ने और धार्मिक व शासकीय सत्ताओं से टकराने का जो साहस भक्तिकाल के कवियों ने दर्शाया है, वह हमेशा ही अनुकरणीय रहेगा। दोस्तों, आज हमने अध्ययन किया भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि के बारे में, जिसमें हमने जाना भक्ति काव्य की चारों धाराओं के कवियों के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में, उनके आचार्यों के बारे में। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे संत काव्य धारा, उसकी विशेषताएं और संत कवि। तब तक के लिए धन्यवाद।